कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और उस समय सार की हम 49 नंबर की गाथा को देख रहे हैं और ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस गाथा में जो प्रश्न था शिष्य का कि भाई आप तो कह रहे ये अध्यवसान आदि भावों से यानी ये मिथ्यात्वादी भाव राग द्वेष आदि भाव इनसे यह भगवान आत्मा जुदा है भिन्न है तो वो ऐसा जो कोई आत्मा है तो वो है कैसा, उसका स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या है, ऐसा प्रश्न पूछने पर इस गाथा का जन्म हुआ है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यह आत्मा रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, स्पर्श रहित है और अशब्द है। और बीच में क्या बताया कि चेतना गुण जिसमें है ऐसा है और साथ में कहते हैं अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है ऐसा तू आत्मा को। और एक बात रहेगी अलिंग ग्रहण है, तो ये क्या बात है वो हम देख रहे हैं। तो ये टीका में हम देखते देखते पृष्ठ क्रमांक 60 पर आए हुए हैं। अब ये 60 में हम देख रहे हैं, थर्ड लाइन से चालू करते हैं 60 पृष्ठ पे। ए रीते जीव खरेखर उद्गल द्रव्य थी अन्य हुआ थी तेमा एटले जीव मा शब्द पर्याय विद्यमान नथी माटे अशब्द छे। कौन? जीव। अभी यहाँ शब्द पर्याय क्या है ये बात अपनी कल चल रही थी, उसको आज हम दोबारा देखेंगे। यहाँ तो पहले अभी तक तो हमने क्या देखा था कि रस नाम का गुण, अब यहाँ शब्द पर्याय यह बात आई। तो वहां तो गुणों की बात थी, रस रूप गंध आदि स्पर्श, वहां तो द्रव्य गुणों की बात आई थी कि ऐसा गुण आत्मा में नहीं है, वह गुण आत्मा आत्मा नहीं है, इस तरह से जो बात हुई थी। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि शब्द पर्याय वह आत्मा में नहीं है, विद्यमान नहीं है, इसलिए आत्मा अशब्द है। तो ये शब्द पर्याय क्या होता है? तो शब्द पर्याय जो है वह स्कंद जो है, पुद्गल स्कंद, इनसे वो निर्मित होती है। अभी दूसरी अपेक्षा भी यहाँ ऐसी लगती है कि यह जो स्कंद है वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय है, हमारी इंदुबेन बताएगी। यानी क्या है? पर्याय है, वो द्रव्य पर्याय है। तो यानी स्कंद इट्सेल्फ द्रव्य पर्याय है, ये बात ध्यान रखना। तो वहां कहते वो द्रव्य पर्याय है या गुण पर्याय है इसकी बात न करते हुए सिर्फ पर्याय इतनी ही बात बताई। तो कह रहे हैं कि उद्गल द्रव्य जुदा है और जीव जुदा है, इसलिए जीव में शब्द पर्याय है ही नहीं, इसलिए वह अशब्द है। वह यानी कौन? जीव, आत्मा। ये बात ख्याल में आई? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसको स्कंद, स्कंद पर्याय कहो या शब्द पर्याय कहो, ख्याल में है ना? देखो, जब हम देखते हैं कि ये अनेक द्रव्य की मिली जुली ऐसी समान पर्याय है, तो उसको हमने समान जातीय द्रव्य पर्याय कहा, और हम और आप अभी जो हैं वह असमान जातीय द्रव्य पर्याय है मनुष्य कहने से। तो मनुष्य पर्याय है कि नहीं? फिर दो द्रव्यों की मिलकर पर्याय है क्या? ख्याल में है ना? फिर कहते हैं ऐसा, बात ख्याल में आ गई? तो यहां तो आपका कहना है कि स्कंद यही पर्याय है, ऐसा जो आपने बताया था, यही अपेक्षा कि वो समान जाति द्रव्य पर्याय है, इस अपेक्षा से। हाँ जी, हाँ, स्कंद इटसेल्फ पर्याय है, तो वो शब्द पर्याय वाली स्कंद है, समझ लो। स्कंद यानी वो अनेक उद्गल परमाणु आ गए ना, बराबर, कोई बात नहीं, अभी समझ में आया। ये समान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे उसको हम। अब आगे, पुद्गल द्रव्य ना पर्यायो थी भिन्न हुआ थी, या भी जो पुद्गल द्रव्य नहीं जो पर्याय है ना, तो ये पुद्गल द्रव्य का हमने कल ही देखा था कि पुद्गल में दो विभाजन होता है, एक परमाणु और एक स्कंद, उन दोनों को भी पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अब यहां समझा रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य ना पर्यायो थी, यानी ये शब्द पर्यायो थी, कौन हूं स्वयं पोते भिन्न हुआ थी। पोते पन शब्द पर्याय नथी, यानी मैं स्वयं शब्द पर्याय नहीं हूं। पहले तो कहा था मेरे में शब्द पर्याय नहीं है, अभी मैं स्वयं शब्द पर्याय नहीं हूं, इसलिए मैं अशब्द हूं, माटे हूं अशब्द छे। अभी जीव अशब्द छे ऐसा कह रहे, मैं कह रहा हूं मैं अशब्द हूं, यहां तो क्या कहा, जीव अशब्द है। तीसरा, परमार्थे यानी निश्चय से, यानी खरेखर जो आमा आवे तो उद्गल द्रव्य नु स्वामीपणु पन तेने एटले जीव ने, हम ऐसा लेना मने नथी, वहां तो जीव की बात कर रहे हैं, तो तेने नहीं हुआ थी, यानी ये क्या निश्चित हो गया कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, तो पुद्गल का स्वामी कौन? पुद्गल का स्वामी पुद्गल, तो मैं नहीं हूं या जीव नहीं है, तो परमार्थ है यानी निश्चय से वास्तविकता यथार्थ पने देखा जाए तो पुद्गल द्रव्य नु स्वामी पनुपन जीव ने नहीं हुआ थी, ते यानी जीव द्रव्येन्द्रिय ना आलंबन वड़े पन शब्द सांभतो नथी, क्योंकि जो मेरा नहीं है उसका पैसा भी मेरा है, ऐसा कैसा होगा? हाँ, तो ये जल्दी समझ में आता है। अभी शरीर ही मैं नहीं हूं, क्यों? शरीर तो पुद्गल है, मैं तो चेतन स्वभाव ही हूं, तो वह मेरा नहीं, तो उसके इंद्रियों के द्वारा मैं, यानी शरीर के जो इंद्रिय है, अवयव है, उससे मैं जानूं, ये बात कहां से सही ठहरेगी, ऐसा पूछते हैं। क्या कहा? देखो देखो, परमार्थ है पुद्गल द्रव्य नु स्वामीपनु पन तेने नहीं हुआ थी, ते द्रव्येन्द्रिय ना आलंबन वड़े पन शब्द सांभतो नथी, एटले जीव द्रव्येन्द्रिय ना आलंबन एने एनो अवलंबन लेवाती सांभळे छे, शब्द ने सांभळे छे, सांभतो नथी, माटे अशब्द छे, मैं सांभळे छे एम नथी, ऐसा कहने वाला था। ये तीसरा पॉइंट समझ में आया। अब चौथा, आज ये आई नहीं ना हमारी प्रतिभा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, पोताना स्वभावनी दृष्टि में दृष्टि थी जोवामां आवे तो, यानी ये पोताना स्वभावनी यानी प्रत्येक द्रव्य के अपने स्वभाव की अपेक्षा से उसके तरफ देखने में आवे तो, अभी यहाँ हम लेंगे मेरे स्वभाव की अपेक्षा से मेरे तरफ देखने में आवे तो, यहाँ जीव के स्वभाव की अपेक्षा से उसके तरफ देखने में आवे तो, क्षावशमिक भावनों पर तेने अभाव हुआ थी। ये क्या समझा रहे हैं, देखो देखो कि जीव का स्वभाव क्या है, तो कहते हैं पारिणामिक भाव है। तो ये क्षावशमिक जो है वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? पर्याय है ना, तो पर्याय तो समय पूर्ति है, मैं अनादि अनंत हूं, तो मेरा स्वभाव क्षायक्षमिक भाव, छोड़ो औपशमिक भाव, क्षायिक भाव तो होगा क्या? नहीं नहीं, क्योंकि स्वभाव में तो पारिणामिक भाव है ना, ख्याल में? तो इसलिए ये क्षायक्षमिक भाव मेरा स्वभाव भाव नहीं है, ये बताना चाहते हैं। यानी त्रिकाल स्वभाव में वो क्षायक्षमिक भाव नहीं आता। तो क्या समझा रहे हैं, देखो फिर से, पोताना स्वभावनी दृष्टि थी जोवामां आवे तो, क्षावशमिक भावनों पर जीव ने अभाव हुआ थी, ते भावेन्द्रना आलंबन वड़े पन शब्द सांभड़तो नथी। त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से ही बात की है, वहां पर्याय में कि जो कुछ चल रहा है उसकी बात नहीं ले रहे हैं। माटे अशब्द छे कौन ते त्रिकाली द्रव्य, सकल विषयों ना विशेषों में साधारण एवं एकज संवेदन परिणाम रूप तेनो स्वभाव हुआ थी, यानी जीवनो स्वभाव हुआ थी, ते केवल एक शब्द वेदना परिणाम ने पामी ने शब्द सांभड़तो नथी, माटे अशब्द छे। अभी देखो यहाँ क्या है, ये समझा रहे कि इसका क्या स्वभाव है, तो कहते जानना जानना जानना, सकल विषयों को जानना, ऐसा उसका स्वभाव है। तो सकल विषयों को जानना स्वभाव होगा, तो एक ही विषय को जाने ऐसा स्वभाव है क्या? नहीं नहीं नहीं, सकल विषयों को जानेगा। तो अगर वो एक ही विषय को यानी यहाँ शब्द को सिर्फ जानता तो वो शब्द उसमें होता, लेकिन ये क्या है, सारों को जानता है, सिर्फ एक को नहीं जानता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी वो कैसा समझा रहे, केवल एक शब्द वेदना परिणाम ने पामी ने, यानी शब्द के अनुभव रूप स्वयं परिणमेगा, वैसा वह शब्द सांभड़ता नहीं है, इसलिए वह अशब्द है। पांचवा ये हो गया, अभी आखिर का क्या है, तेने समस्त ज्ञेयनु ज्ञान थाई छे, परंतु यानी कोई ज्ञेय को नहीं जाने ऐसा नहीं है, जाने तो सब ज्ञेयों को, लेकिन सकल ज्ञेय ज्ञायक ना तादात्म्यनो निषेध हुआ थी, यानी ज्ञेय पदार्थ और ज्ञायक इन दोनों का कभी एक में एक रूप बना नहीं होता है, हाँ वह कभी तादात्म्य रूप नहीं होते हैं। वह देखो हमने लड्डू खाया और मीठा है ऐसा अनुभव किया, तो क्या मीठापन और यह ज्ञान दोनों एक में हो गए कि नहीं? दोनों अलग है, क्योंकि ज्ञेय और ज्ञायक ये कभी तादात्म्य रूप से नहीं होते हैं, नहीं तो बार बार ये तो जानेगा तो पुद्गल को ही, तो ये स्वयं ज्ञान पुद्गल में हो जाएगा, या तो वो जानने वाले जो अन्य पदार्थ है वो ज्ञान में हो जाएंगे, दोनों में से एक होगा ना, कुछ तादाद में नहीं है, ऐसा समझा रहे। तो कहते हैं समस्त ज्ञेयनु ज्ञान थाई छे, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक ना तादाद में नो निषेध हुआ थी। अभी यहाँ सबको हटाकर शब्द ने जाने छे, शब्द ना ज्ञान रूपे परिणमता छता पन पोते शब्द रूपे परिणमतो नथी, यानी यहाँ द्रव्य परद्रव्य रूप या पर पर्याय रूप होता नहीं है, यानी मैं स्वयं जीव या यहाँ जीव जो अभी शब्द को जान रहा है उस रूप स्वयं नहीं परिणमता है। इसलिए मैं कैसा हूँ, माटे जीव अशब्द छे, आम छ प्रकारे शब्दना निषेधती ते अशब्द छे, यानी अशब्द किस प्रकार से नहीं है, अशब्द किस प्रकार से है, ये बात उन्होंने बताई है। हवे निर्दिष्ट संस्थान गड़बड़ हो गए, हवे अनिर्दिष्ट संस्थान विशेषण समझावे छे। अभी यहां सिर्फ चार ही पॉइंट बताएंगे, छह पॉइंट नहीं आएंगे। उद्गल द्रव्य वडे रचायेलू जे शरीर तेना संस्थान, एटले तेना आकार थी जीव ने संस्थान वालो कही शकातो नथी। ये नहीं समझ में आया ना, मैं बताता हूं आपको। हमारे घर में पानी था, तो हमने पानी लेकर बाल्टी में डाला, तो पानी का आकार कैसा हुआ, बाल्टी का। फिर उसमें से एक पानी परात में डाला तो कैसा हुआ, परात का। फिर उससे लेकर एक लोटे में डालो तो लोटाकार हो गया। तो ये जो अलग अलग आकार जो हो रहे हैं वो किस कारण हो रहे हैं, बोलो। हाँ नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो रश्मि बहन, आप जानती हैं। योग्यता तो है, पर योग्यता कौन सी है, हाँ तो कौन सी, उसमें कौन सी ऐसी योग्यता है, क्या वो किस गुण के कारण कहो, चलो। हाँ बहुत अच्छा, प्रदेशत्व गुण। ये प्रदेशत्व गुण किस में होता है, सिर्फ पानी में, सभी द्रव्यों में, क्यों, बात ख्याल में आ गई। तो अभी ये शरीर का जो कोई संस्थान कहो आकार कहो, उसमें जो अनंत परमाणु है उनका हरेक का अपना अपना आकार है, और जीव द्रव्यों का भी आकार अपने स्वयं के कारण से है। तो अभी जीव शरीर प्रमाण है ऐसा जब हम कहते हैं तो शरीर के कारण वह आकार बना है ऐसा नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं कि अपनी योग्यता से वैसा उसका आकार हुआ है और शरीर भी वैसा है, ये दो समझ में है। तो यहाँ क्या समझा रहे, देखो, पुद्गल द्रव्य बड़े रचायेलू जे शरीर, ये शरीर कैसे बना है, पुद्गल द्रव्य से, तेना आकार थी जीव ने आकार वालों कही शकातो नथी, संस्थान वालों कही शकातो नथी, माटे जीव अनिर्दिष्ट, निर्दिष्ट यानी कहना बताना दिखाना, अनिर्दिष्ट यानी किसी भी आकार का है ऐसा नहीं बता पाते हैं, ऐसा आकार का किसी आकार का है ऐसा नहीं समझा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये बात ख्याल में आ गई प्रेरणा बिन, बात ख्याल में आ गई। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, पोताना नियत स्वभाव थी अनियत संस्थान वाला अनंत शरीरों में रहे छे, माटे अनिर्दिष्ट संस्थान छे। ये क्या कह रहे हैं, स्वयं का जीव का स्वयं का स्वभाव कैसा है कि नियत है, ये अभी कौन सी बात चल रही, आकार की अपेक्षा से। तो जीव का आकार निश्चित है, नियत है, तो कौन सा होगा। हाँ किसका कित कौन सा बता, नहीं सुना वो बहुत आस्ते बोलती है जरा आजकल, हाँ पूना जाके ना ठंडी लगी अभी उनको। देखो देखो क्या कहते हैं वे, लक्ष्मी बहन ऐसा कह रही हैं कि इनका नियत आकार होता है, किसका, जीव का, कौन सी अवस्था में, निगोद में रहे या महामत्स्य में जाए या जिनेन्द्र भगवान के जो आखिरी शरीर होगा उस, मतलब वो सिद्ध दशा लो ना, बाकी जिनेन्द्र भगवान को रखो बाजू, तो उनको आकार है, कौन सा है, नियत आकार है। कौन सा नियत आकार है? असंख्यात प्रदेशी। वो कैसा है? नियत है। अभी हमको क्या है कि हम पहले झोपड़ी में रहते थे तो 10x10 की झोपड़ी, फिर बाद में हमने फ्लैट लिया तो 500 स्क्वायर फुट का लिया, फिर बाद में हमने महल बांधा, क्या बंगला बांधा तो उसमें हमको 2000 स्क्वायर फुट, तो हमारे रहने का घर का आकार जो है वो अनियत है, निश्चित नहीं है। लेकिन आत्मा का आकार कैसा है? बिल्कुल असंख्यात प्रदेश, उसमें एक भी स्क्वायर फुट कम नहीं होता है, यानी उसमें कोई कम अधिक नहीं होता है। असंख्यात प्रदेशों में एक भी प्रदेश कम नहीं होगा, ये एक भी प्रदेश बढ़ेगा नहीं। तो क्या कह रहे हैं? देखो अभी यहां क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। अभी यहां समझा रहे, पोताना नियत स्वभाव थी, यानी वो है तो नियत स्वभाव ही, और रहता कहां है? अनियत जगह पे। कहां पर? अनियत संस्थान वाला, ये अनंत शरीरों में रहे छे। अनंत शरीरों में यानी आज ये शरीर है, कल वो शरीर है, ऐसा अलग 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 शरीर रहता है, फिर भी उसका स्वयं का तो नियत संस्थान है कहो या आकार है कहो। इसलिए वो कह रहे अनियत संस्थान वाला अनंत शरीरों में रहे छे, माटे अनिर्दिष्ट संस्थान छे। है नियत, अनियत के साथ रहता है कहो, फिर भी वह अनिर्दिष्ट संस्थान है, उनका आकार नहीं बता पाते। अब तीसरा पॉइंट, ये संस्थान नाम का जो कर्म है, यानी नाम कर्म जो है, संस्थान समझते हैं आप? संस्थान नाम कर्म के भेद कोई जानता है? हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। छह प्रकार ना संस्थान ना नाम कर्म ना नामो कहो। धक्का मार भाई। हाँ बोलो साहब। हाँ आखिर से चालू किया। अच्छा हाँ बोलो। ठहरो 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 ठहरो, बहन को बोलने दो, अरे उनको कभी चांस मिले तो सही। हाँ बोलो बहन, मालूम छे? हाँ हाँ हाँ, कौन सा? किलक, तिलक, आप जानती हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कहना चाहेंगे? हाँ पहला कौन सा? इन्होंने तो उल्टा पुल्टा किया। हाँ समचतुर्थ संस्थान जो सबसे अच्छा है उसको तो पहला बोलो। हाँ सब अभी भले हमको नहीं हुए, उसमें क्या है? हाँ समचतुर्थ संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक, या वामन कुब्जक हुंडक। अभी देखो न्यग्रोध परिमंडल यानी समझते हैं आप कैसा होता है? न्यग्रोध, न्यग्रोध यानी बड़ का झाड़ कैसा होता है, ऊपर ऐसा डेरेदार और नीचे उसका जो थड़ होता है आप क्या बोलते हैं, वो एकदम ऐसा छोटा होता है। ऐसे कई कई लोग होते हैं कि ऊपर से एकदम ऐसा, वो इनक्रेडिटेबल, देखा ना तो कैसा, और पीछे नीचे जैसे ऐसे ऐसे। हाँ ख्याल में है? तो वो न्यग्रोध परिमंडल। और स्वाति यानी कैसा है? ऊपर छोटा और नीचे ऐसा मोटा। और कुब्जक यानी समझो यहाँ कुंदो हो ही ने। हाँ क्या कह रही है? हंच 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 बैक ऑफ नॉट रिटर्न सब। हाँ क्या करें, लोगों को जिस भाषा के हम ब्लेंचों के साथ ब्लेंच की भाषा में ख्याल में। अब वामन यानी जो हाइट में, मतलब जिसको ड्वार्फ कहेंगे ना, ड्वार्फ, हाँ जो डार्फ जो डॉर्फ जो भी होता है। और जो तीसरे लास्ट में कौन सा है? हुंडक। हुंडक का यानी उसका हम कोई मतलब उसके शेप का वर्णन नहीं कर सकते ऐसा। अभी जैसे मान लो कि बिच्छू कैसा है, ये स्पाइडर कैसा है, उसका हम वी कैन नॉट डिस्क्राइब। अभी फूल का झाड़ जो है ऐसा, सारे के अलग अलग कोई हम ये नहीं कर सकते। ये स्थूल रूप से मैंने ये संस्थान बताया। तो अब यहाँ संस्थान की क्या बात कर रहे हैं? संस्थान नाम कर्मनो विपाक, विपाक यानी जो उसका फल पुद्गलोमा ज केवामा आवे छे, यानी उसका फल तो पुद्गल में ही मिलता है, ये शरीर जो है वो भी पुद्गल है ना, तो उसका फल पुद्गलोमाज केवामा आवे छे, तेथी तेना निमित्त थी पन आकार न थी। यानी ये जीव का आकार लोटे में डाला, परात में डाला, बाल्टी में डाला, इसलिए वैसा हुआ, ऐसा नहीं। वो उसका अपना अपना स्वयं का ही आकार है। ये ऐसा संस्थान से ऐसा आकार हो गया, ऐसा जरा भी नहीं। निमित्त से कहे तो बात जुदी है, पर मूल अगर स्वभाव में देखा जाए तो वैसा उसका आकार नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, फिर से पढ़ रहा हूं, संस्थान नाम कर्मनो विपाक एटले फल पुद्गलोमाज केवामा आवे छे, तेथी तेना निमित्तथी पण आकार नथी, माटे अनिर्दिष्ट संस्थान छे। ये बात समझ में आ गई अश्विन भाई, राइट? जुदा जुदा संस्थान रूपे परिणमेली समस्त वस्तुओना स्वरूप साथे। क्या कहते हैं? जुदा जुदा संस्थान रूपे ने आकार रूपे परिणमेली समस्त वस्तुओना स्वरूप साथे, जेनी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित अर्थात तदाकार छे, एवो हुआ छता पन जेने समस्त लोकना मिलापती एटले संबंधती रहित निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति थई रही छे, एवो होवाती पोते अत्यंतपने संस्थान विनानो छे। यानी उनकी अपेक्षा से संस्थान विना है, अपने स्वयं की अपेक्षा से तो है उसके, माटे अनिर्दिष्ट संस्थान छे। यानी वो अभी जो अलग अलग पर्यायों में यह जीव जाता है और उस अलग अलग पर्याय में वह स्वयं अपनी योग्यता से उस रूप का आकार धारण करता है। क्या कहते हैं? जुदा जुदा संस्थान रूपे परिणमेली समस्त वस्तुओना स्वरूप साथे, यानी अन्य द्रव्यों के साथे, जेनी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित छे, यानी उनको वो जाने लेकिन उस रूप परिणमे नहीं। आप कुछ बताना चाहते हैं? बताओ बताओ।
यानी प्रत्येक गेय का अपना अपना आकार है ना, उसके आकार तदाकार होना है ना, उसको जानना, अन्य वस्तुओं के आकार को जानना, जिसे प्रत्येक गेय को अपना अपना संस्थान है ना, आकार है, तो सभी गेयों को उनके आकार सहित जानना, इतना ज्ञान का कार्य है, परंतु उस आकार रूप परिणमित नहीं होता है, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। ज्ञान तो अपना जो आकार उसका अपना है वैसा ही रहेगा, परंतु अन्य गेयों के आकारों को जान लेता है। यहाँ लिखा है ना, उसकी अन्य गेयों के साथ संबंध क्या है, तो उसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति जो है, ज्ञान शक्ति जो है, उसके कारण अन्य के साथ संबंध कैसा आया है, गेय ज्ञायक संबंध है ना, अन्य पदार्थों का और आत्मा का क्या संबंध है, गेय ज्ञायक संबंध है, तो गेय के जो आकार है वो ज्ञान जान लेता है, परंतु उस आकार रूप नहीं होता। ये बात यहाँ संस्थान की बात चल रही है, इसलिए जैसे अभी अन्य छह बोलों में हमने क्या देखा था, शब्द को जानता है परंतु स्वयं शब्द रूप नहीं होता, वैसे यहाँ अन्य पदार्थों के आकारों को जानता है परंतु स्वयं उस आकार रूप नहीं होता,
इसलिए संस्थान विना नो छे, ऐसा बोला। आम चार हेतु थी संस्थान नो निषेध करियो, हवे अव्यक्त विशेषण सिद्ध करे छे। अभी यह आत्मा अव्यक्त है, यानी वह व्यक्त नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं। अभी देखो क्या कहते हैं, छ द्रव्य स्वरूप लोक जे ज्ञेय छे अने व्यक्त छे, तेना थी जीव अन्य छे माटे अव्यक्त छे। यानी यह जो लोक है, जो छ द्रव्यों से बना हुआ, उसमें क्या कह रहे हैं, वह ज्ञान का गेय है और वो व्यक्त है, ज्ञान में जनाया जा रहा है, लेकिन वही कि तेना थी जीव अन्य छे, क्योंकि ये सब जुदे हैं और जीव जुदा है, इसलिए वे व्यक्त है तो जीव अव्यक्त है। ऐसा समझा रहे। अभी कह रहे कषायोनो समूह जे भावक भाव व्यक्त छे तेनाथी जीव अन्य छे माटे अव्यक्त छे। ये कषायोनो समूह कहो या विकारी भाव कहो, तो विकारी भाव किस लिए होते हैं? ते कर्म के कारण। तो कर्म को यहाँ भावक कहा गया है और जीव को यहाँ भाव कहा गया है। ये कषायों को यहाँ भाव कहा गया है, जीव को नहीं। तो ये कषायनो समूह जे भावक भाव व्यक्त छे, यानी यहाँ तो जो भावक है कर्मों के कारण यह जीव भाव करता है, ऐसे कषाय करता है, वह व्यक्त है। अने तेनाथी जीव अन्य छे, वह कोई राग द्वेष रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, इसलिए वह अव्यक्त है, ऐसा समझा रहे। अब तीसरा पॉइंट, चित्त सामान्य मां चैतन्य नी सर्व व्यक्तियों निमग्न अंतर्भूत छे माटे अव्यक्त छे। देखो ये चित्त सामान्य यानी जो आत्मा का जो स्वभाव है उसमें चैतन्य नी सर्व व्यक्तियों निमग्न छे। अभी यहाँ जो जीव के जो जुदे जुदे परिणाम है, अभी हम परिणाम को हटा देते हैं। अभी जो भूतकाल की जो पर्याय है वो कहाँ गई है? द्रव्य में समाहित हो गई है, ख्याल में। और जो भविष्य की कहाँ है? तो अभी द्रव्य में ही मौजूद है, ख्याल में। क्या कहते हैं? चित्त सामान्य चैतन्य नी सर्व व्यक्ति हो निमग्न कहाँ? द्रव्य में निमग्न है, अंतर्भूत छे, लेकिन इसलिए वो द्रव्य में जो पर्याय है उस रूप यह द्रव्य नहीं, इसलिए वह अव्यक्त है।
देखो यहाँ सामान्य की बात है ना, हम सामान्य को त्रिकाल्य को देखते हैं तो हमें वो पर्याय गौण हो जाती है, निमग्न हो जाती है, वो द्रव्य के बाहर कहीं और चली नहीं जाती अलोकाकाश में, क्या है ना, वो है वहीं पर, गौण हो जाती है, हमारी दृष्टि में नहीं आती है। व्यक्त यानी व्यक्ति यानी पर्याय, चैतन्य की सभी व्यक्तियां, अभी सामान्य विशेषात्मक जो द्रव्य है, सामान्य की दृष्टि करने पर वो जो व्यक्तियां हैं वो विशेष है, वो उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे हमारे पास सोने की बंगड़ी है, हमें सोना देखना है, सोने की दृष्टि से देखते हैं तो बंगड़ी कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही, उसी में है, वो निमग्न हो गई, ये व्यक्तियों सम उसमें निमग्न हो गए, ऐसा कहते।
यहाँ व्यक्ति का अर्थ पर्याय लेना,
पर्याय चैतन्य की। यहाँ राग के पर्याय को तो पहले ही बोल में हटा दिया था, अभी चैतन्य की जो पर्याय, चैतन्यमय जो विशेष है उसके, ज्ञान की पर्याय, वो भी अभी एक एक पर्याय की नहीं, हमें पूरा ही द्रव्य सामान्य हमने ख्याल में ले लिया तो अभी पर्याय अलग 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 उसकी दृष्टि नहीं है, इसलिए वो सब निमग्न हो गई, ऐसा कहते हैं, अंतर्भूत है द्रव्य में।
अब जो चौथा पॉइंट है वो कह रहे हैं क्षणिक व्यक्ति मात्र न थी, व्यक्ति यानी यहां पर्याय मात्र न थी, यानी आत्मा कैसा है वो तो एक समय पूर्ता नहीं है, इसलिए क्षणिक व्यक्ति मात्र न थी माटे अव्यक्त छे। ये व्यक्ति यानी यहां व्यक्त यानी जो पर्याय है उस रूप नहीं है, तो वह कायम है, इसलिए उसे कह रहे हैं के माटे अव्यक्त छे। व्यक्तपणु तथा अव्यक्तपणु भेड़ा मिश्रित रूपे तेने प्रतिभासवा छता पण ते व्यक्तपणाने स्पर्शतो नथी माटे अव्यक्त छे। यानी जो पर्याय रूप है और जो द्रव्य स्वरूप है वो दोनों एक में होते हुए दिखाई देने पर भी प्रतिभासवा छतापन, वह जो द्रव्य है वह कभी पर्याय रूप नहीं होता। क्या कहा? ते व्यक्तपना ने स्पर्श तो नहीं, यहां क्या कहते हैं? द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता है। क्या कहा फिर से? व्यक्तपनु यानी यहां पर्याय तथा अव्यक्तपनु यानी द्रव्य, ये दोनों भी एक में हुए जैसे दिखाई देते देने पर भी व्यक्तपना ने ते एटले द्रव्य यानी अव्यक्तपना, व्यक्तपना ने स्पर्श तो नहीं माटे अव्यक्त छे। यहाँ द्रव्य कभी पर्याय रूप होता ही नहीं है, इसलिए वह अव्यक्त है। पोते पोता तीज बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव ही रहे छे, यानी स्वयं स्वयं से बाह्य में यहाँ पर्याय लेना और अभ्यंतर में द्रव्य लेना। पोते पोता तीज बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव ही अनुभवाई रहे होवा छता पण व्यक्तपना प्रते उदासीनपने प्रद्योतमान एटे प्रकाशमान छे माटे अव्यक्त छे। यानी यहाँ क्या समझाना चाहते हैं, देखो हम अभी दूसरी अपेक्षा से जरा सोचेंगे, हमें आत्मा का अनुभव करना है तो हमें क्या कहा जाता है, कहाँ पर दृष्टि रखो, तो अपने त्रिकाली स्वभाव में, बात समझ, तो वहां पर्याय होगी कि नहीं? हाँ भाई साहब, पर्याय होगी कि नहीं? तो उसको गौण करना है, तो जो आत्मा का अनुभव कर रहा है वो पर्याय के प्रति उदासीन है, उसकी तरफ देखता ही नहीं है, वो तो त्रिकाली स्वभाव में देखता है, तभी उसको आत्मानुभूति हो, ये बात नक्की है ना। अब वही बात यहां बता रहे, देखो पोते पोता तीज बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव ही रहो हुआ छता, अब यहाँ द्रव्य भी अनुभव में आ रहा है, पर्याय भी अनुभव में आ रही है, पण व्यक्तपना एटले पर्याय प्रति उदासीनपने प्रकाशमान छे, यानी प्रकाशमान छे नहीं, उसको जानता नहीं है, प्रद्योतमान यानी जो क्या कह रहे हैं, जानने में तो दोनों आ रहे लेकिन उसके तरफ वह लक्ष्य नहीं दे रहा है, उसके प्रति वह एकाग्र नहीं हो रहा है, इसलिए वह कौन सा है कि माटे अव्यक्त छे। पर्याय को यहाँ व्यक्त कहा है हमेशा और द्रव्य को अव्यक्त कहा है, इस अपेक्षा से आम छ हेतु थी अव्यक्तपनु सिद्ध करियूं। आ प्रमाणे रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान अने व्यक्तपनानो अभाव हुआ छता पण स्वसंवेदनना बळथी पोते सदा प्रत्यक्ष होवाथी अनुमान गोचर मात्रपनाना अभावने लीधे अलिंग ग्रहण कहेवामां आवे छे। ये अलिंग ग्रहण का अर्थ किया उन्होंने, क्या कह रहे हैं, इस तरह से अभी जो हमने देखा उस तरह से रस रूप रूप गंध रूप और स्पर्श रूप शब्द रूप संस्थान रूप व्यक्त जो है, ये सारी बातें जो है इनका अभाव है किसमें, द्रव्य में, ऐसा होते हुए भी ये पण स्वसंवेदना बल थी पोते सदा प्रत्यक्ष हुआ थी, यानी वो जब स्वयं का अनुभव करता है तब वह अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसा होने से वह आत्मा जो है वो अनुभव गोचर मात्र पनाना अभाव ने लिया, अनुमान वह अनुमान से जाना नहीं जाता है, ऐसा होने से यानी वो अनुमान गोचर मात्र पनानो अभाव छे, यानी अनुमान से ऐसा आत्मा होना चाहिए ऐसा होता होगा, ऐसा अनुमान जहां नहीं होता है लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ये क्या लिखा देखो, पण स्वसंवेदना बढ़ती पोते सदा प्रत्यक्ष हुआ थी, लेकिन ये सदा है तो प्रत्यक्ष लेकिन ये देखता ही नहीं ना, यानी वो अपने को मैं इस रूप हूं ऐसा मानता ही नहीं जानता ही नहीं उसमें विश्वास ही नहीं करता है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है कि सदा प्रत्यक्ष होना ये उसका स्वभाव विद्यमानता है ना उसकी, तो ऐसा होने पर भी और उससे वो अनुभव में आता है लेकिन इस कारण अनुमान गोचर मात्रपनानो अभाव छे, इसलिए वे अलिंग ग्रहण, अलिंग यानी किसी भी लिंग के द्वारा यानी किसी भी अनुभव अनुमान से वह जाना नहीं जाता है, इसलिए उसको अलिंग ग्रहण कहने में आता है। अब आगे पोताना अनुभव में आवता चेतन चेतना गुण वड़े सदाय अंतरंग में प्रकाशमान छे तेथी जीव चेतना गुण वाड़ो छे। ये क्या कहते हैं, ये चेतना गुण जो है उसके कारण से स्वयं के अनुभव में आवे ऐसा सदा अंतरंग में प्रकाशमान रहता है, तेति उसको उस कारण से उस जीव को चेतना गुण वाला कहा है। केवो छे चेतना गुण के जे समस्त विप्रतिपत्तियों नो, एटले जीव ने अन्य प्रकारे मानवारूप झगड़ाओं नो नाश करनार छे। क्या कि आत्मा को कैसा जाना जाएगा कि स्वयं से ही स्वयं के चेतना गुण के माध्यम से ही, यानी हम ज्ञान स्वरूप है तो हम ज्ञान के माध्यम से ही अपने को जानेंगे, अन्य कोई उसमें कोई जानने का मार्ग ही नहीं है। ये जो लिखा है ना समस्त, कैसा जे समस्त विप्रतिपत्तियों नो, यानी जीव ने अन्य प्रकारे मानवा रूप झगड़ाओ नो, यानी जीव कैसा है कि जो शुभ शुभ भाव से जाना जाएगा या ऐसा ऐसा कुछ करने से भगवान अपना स्वयं का अनुभव होगा, ये जो अन्य अन्य बातें हैं वो जो झगड़ा है वह झगड़ा झगड़ाओं का नाश करने वाला है कौन? चेतना गुण। कि चेतना गुण के कारण से ही वह चेतना गुण के माध्यम से ही स्व का अनुभव करेगा, ये बात बता रहे। जेने पोतानु सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों ने सौंपी दीदू छे, यानी मैं कैसा हूं कि भेद ज्ञानी जीवों के अनुभव में आ सकूं, ऐसा हूं यानी मैं स्वयं भेद ज्ञानी हूं तो मेरे अनुभव में आएगा। तो ये जीव की बात है ना, तो हाँ जी चेतना गुण,
चेतना गुण के वो छे
कि जेने
तो जेने पोतानो सर्वस्व भेद ज्ञानी जीव ने सौंपी दीदू छे, यानी दूसरी भाषा में भेद ज्ञानी जीव
ज्ञान से ही
चेतना गुण को जान रहे हैं,
चेतना गुण को जान रहे हैं या चेतना गुण के माध्यम से स्व को जान रहे
हैं? नहीं नहीं, के वो छे चेतना गुण,
हाँ
कि जेने पोतानु यानी चेतना गुण नु सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों ने सौंपी दीदू छे। ओके, के वो छे चेतना गुण, उसको अभी
आगे
कौमा हुआ है ना, उसी की बात चल रही है। पहले में पहले अन्य मतियों का जो खंडन करता है, आत्मा को अन्यथा मानने वालों का खंडन हो जाता है, क्योंकि आत्मा चैतन्य स्वभावी है और हम जानने का कार्य हर समय हो रहा है, ये तो प्रत्येक जीव के ख्याल में आता है, हमारा जानना 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 चल रहा है ना, तो उसके द्वारा आत्मा चेतना गुण वाला है ये साबित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और ये चेतना गुण कैसा है? तो भेद ज्ञानियों के द्वारा उसका अनुभव होता है। तो अलंकारिक भाषा में क्या कहा? चेतना गुण अपना सर्वस्व, अपना सर्वस्व यानी चेतना गुण का सर्वस्व क्या है? सभी को जानने की शक्ति है ना, उसमें सर्वज्ञपना है। तो भेद ज्ञानियों के द्वारा उसका जो सच्चा स्वरूप है वो जानने में आ जाता है।
जे समस्त लोकालोक ने ग्रासीभूत करी जाने के अत्यंत तृप्ति वड़े ठरी गयो होए तेम, अर्थात अत्यंत स्वरूप सौख्य वड़े तृप्त तृप्त होवाने लीधे स्वरूप माती बाहर निकलवानो अनुद्यमी होए तेम। क्या कह रहे हैं? ये चेतना गुण जो है उसने क्या किया है? समस्त लोकालोक ने ग्रासीभूत करी, यानी सबको जानकर, ग्रासीभूत करना यानी क्या? ग्रास करना यानी कि कवल करते ना, वैसा सबको जान जिसने लिया है, अत्यंत तृप्ति वड़े ठरी गयो, और वो जानने के बाद उन्हें अत्यंत तृप्ति हो गई है, इसलिए वो वहाँ मतलब रुक गए हैं, एकमेक हो गए वहाँ, ठरी गयो छे, ठरी गयो का क्या हिंदी में करें अभी? स्थिर हो गया है, हाँ। एकाग्र हो गया है।
अभी ये चेतना गुण की बात अभी हो गई, अभी जीव की बात चलेगी। हाँ, वो फुल स्टॉप आ गया ना, चेतना गुण के वो छे वो तो हो गया,
स्वभाव छे।
अभी वो नीचे के जो दो लाइन है ना, वो चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव छे, देखो देखो, जे समस्त लोकालोक ने ग्रासीभूत करी जाने के अत्यंत तृप्ति वड़े ठरी गयो हो तेम, उसका अर्थ क्या किया? अर्थात अत्यंत स्वरूप सौख्य वड़े तृप्त तृप्त होवाने लीधे स्वरूप माथी बाहर निकलवानो अनुद्यमी होए तेम, ये जीव की बात है ना, स्वरूप में स्थिर हो गया है, उसमें से बाहर निकलने का मन नहीं होता है, बच्चे टीवी के सामने ऐसे चोर जाते हैं, वहां से हटने का मन नहीं होता है, तो ये स्वरूप में ऐसे जम गए हैं कि वहां से बाहर निकलने के लिए वो अनुद्यमी है। और कैसे सर्व काले किंचित मात्र पण चलायमान नथी थतो थतो नथी, अने ए रीते सदाय जरा पण नहीं चलतू, अन्य द्रव्य थी असाधारणपणू हुआ थी, जे स्वभावभूत छे। कैसा स्वभाव है? असाधारण स्वभाव वाले है, आवो चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव छे। ये भाषा है नहीं, संस्कृत का ट्रांसलेशन है, और संस्कृत इतनी ऐसी गाढ़ी है उनकी, अमृतचंद्राचार्य की संस्कृत, तो ये कहाँ किसकी बात चल रही है ये ख्याल में ही नहीं आता। बार बार पढ़ने से फिर कुछ थोड़ा उकेल हो जाता है, स्वामी जी की जब बात पढ़ेंगे तभी और क्लियर हो जाएगा।
जे समस्त लोकालोक ने ग्रासीभूत करी जाने,
नहीं ये करी जाने ने ग्रासीभूत करी, ग्रासीभूत करना यानी समस्त लोकालोक को जानना, जाने के अत्यंत तृप्ति वे ठरी गो है तेम। हाँ, जाने के करी के बाद कॉमा देना। लोकालोक के उसको ग्रासीभूत करना है ने उसको जानना,
याने बराबर है, अत्यंत तृप्ति वाले ठहरी गयो होय तेम। अच्छा अभी तो पूरा ही हो गया। आवो चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव छे, जेनो प्रकाश निर्मल छे, एवो आ भगवान आ लोक मा एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान छे। अब आगे की बात हम बाद में करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकर्ण मो सदादित हो। अश्विन भाई।